ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कोई भी कार्य करने से पहले हम सभी अपने उस निराकार परम पिता परमात्मा शिव की याद में बैठेंगे। गीत बजेगा, उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ होगा।
ईश्वर से जा प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जा लगाए, बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जा प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख, जैसे बरसे झर झर बादल दिल से है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से, निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
मैं अपने सभी मेहमानों को आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर। आदरणीय अंजलि बहन जोधपुर, आदरणीय राजयोगिनी बीके चक्रधारी दीदी जी, राजयोगिनी शारदा दीदी जी, डॉक्टर सुनीता मिश्रा वाइस चांसलर, मोहनलाल सुखाड़िया, श्रीमती सिद्धि जौहरी मोटिवेशन स्पीकर, राजयोगिनी बीके डॉक्टर सविता दीदी जी, राजयोगी करुणा भाई जी, डॉक्टर अंशु प्रिय SDM माउंट आबू, बहन मालय जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी अपना तालियों का सहयोग देते रहें, हमारे मेहमान गण का स्वागत करते रहें। तालियां बजाने से खुशी आती है, तालियां बजाने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। सम्माननीय मंच पर आसीन आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, मीठी मीठी प्यारी डॉक्टर सविता बहन, स्नेही माला बहन वो शारदा दीदी जी, और हमारे अतिथि गणों का व साथ साथ सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों का परमात्मा के घर में, अपने ही घर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दुर्गा का रूप है नारी, काली है, शक्ति है नारी। कुछ भी मानो, इसको तुम ईश्वर का वरदान है नारी, पुरुषों का सम्मान है नारी, बच्चों की स्तोत्र है नारी, दो घरों की पावन डोर है नारी। कुछ भी मानो, इसको तुम ईश्वर का वरदान है नारी। हम सभी परिवार में एक साथ रहते हैं, जीवन बिताते हैं, और परिवार में, समाज से देश में, देश से विश्व में का निर्माण है। परिवार का हर व्यक्ति खुशहाल हो, सभी गुणों से भरपूर हो, नैतिक मूल्य आध्यात्मिकता की शक्ति स्तोत्र यानी कि हर प्रकार से विश्वास में इन सब की धुरी नारी है। हम सभी एक बार नारी के लिए, क्योंकि वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है और ईश्वर ने उसे बहुत बड़ी विशेषताओं से भरा है। व्यक्तित्व का पहला गुरु कहा जाता है, बच्चे का पहला गुरु नारी होती है माँ, जो मूल्यनिष्ठ समाज में, इसलिए इन सभी को मिलकर सभी महिलाओं के सम्मान में एक आवाज में हम सभी गाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम का अर्थ ही है कि हे माता, हे जग जननी, हम आपकी वंदना करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं, हम आपको नमन करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ हम आज के इस कार्यक्रम की, आज के स्तर में और आने वाले सभी स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चा पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मंच पर सभी वरिष्ठ बहनों व अतिथियों का सत्कार करने के लिए, बैजिज व गुच्छों द्वारा स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ बहनों को। हमारे अतिथिगणों का स्वागत करें गुच्छे और बैजिज के द्वारा। धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ मधुरवाणी ग्रुप, सतीश भाई, नितिन भाई, वीरेंद्र भाई, ये सभी मधुबन निवासी भाई हैं, अभी आपके सामने अपना गीत प्रस्तुत करेंगे मधुर वाणी ग्रुप।
एक बार सभी कहें हमारे साथ, ओम शांति। वंदे मातरम, वंदे मातरम, गुंजित है धरती अंबर, आप सभी का स्वागत है, शत शत आपका अभिनंदन। आप आई तो बारिश आई, मौसम भी मुस्काया है, और परिवर्तन के परम पर्व पर प्रभु का मन हर्षाया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन।
परिवार है, सपनों से भी सुंदर ये अपनों का संसार है, अपनों का संसार है। अरावलिया भू पर्वत पर आइए पधारिए, ज्ञान सरोवर बना मनोहर, स्वागत ये स्वीकारिए, स्वागत ये स्वीकारिए। रे गर सगा मगर मा पगर गसर सारे सलीले, गर सगा मगर मा पगर गसर सा। सुन पुकार प्रभु आया है, परिवर्तन मौसम लाया है, प्रभु योजना सफल बनाने आपने कदम बढ़ाया है, अब दैवी रूप रचाइए, अब दैवी रूप रचाइए, दिव्य गुणों को धारिए, ज्ञान सरोवर बना मनोहर, स्वागत ये स्वीकारिए, स्वागत ये स्वीकारिए। अरावलिया भू पर्वत पर आइए पधारिए, ज्ञान सरोवर बना मनोहर, स्वागत ये स्वीकारिए, स्वागत ये स्वीकारिए।
बहुत खुशनुमा वातावरण है, मौसम भी मुस्कुरा रहा है, आज महफिल में मुस्कुराई है।
भारत की सन्नारिया शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारिया, पवित्रता सुख शांति से सींच रही जग क्यारिया, ये पावन दृश्य निहारिए, ये पावन दृश्य निहारिए, प्रभु प्रेम से निज को निखारिए, ज्ञान सरोवर बना मनोहर, स्वागत ये स्वीकारिए, स्वागत ये स्वीकारिए। अरावलिया भू पर्वत पर आइए पधारिए, ज्ञान सरोवर बना मनोहर, स्वागत ये स्वीकारिए, स्वागत ये स्वीकारिए। रे गर सगा मगर मा पगर गसर सारे सली, रे गर सगा मगर मा पगर गसर सा। आप आई बारिश आई, मौसम भी मुस्काया है, परिवर्तन के परम पर्व पर प्रभु का मन हर्षाया है, अब शक्ति रूप सवारिए, अब शक्ति रूप सवारिए, धरती पर स्वर्ग उतारिए, ज्ञान सरोवर बना मनोहर, स्वागत ये स्वीकारिए, स्वागत ये स्वीकारिए। अरावलिया भू पर्वत पर आइए पधारिए, ज्ञान सरोवर बना मनोहर, स्वागत ये स्वीकारिए, स्वागत ये स्वीकारिए, आइए पधारिए, स्वागत ये स्वीकारिए, आइए पधारिए, स्वागत ये स्वीकारिए, आइए पधारिए, स्वागत ये स्वीकारिए।
धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ स्वागत नृत्य के लिए अंजलि बहन जोधपुर से। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रेगुलर विद्यार्थी हैं, तो अभी हमारे सामने अंजलि बहन जोधपुर से आई हैं जो स्वागत करेंगी नृत्य द्वारा। जोरदार ताली बजा करके बच्ची का उमंग उत्साह बढ़ाइए।
हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए।
खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर,
खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर,
ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर,
तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर।
देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए।
खातिर हमारे दूर से
फरिश्ते शुभ होता जिनका ना,
आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीर गुलाब बुलाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीर गुलाब बुलाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीर गुलाब बुलाए।
अति उत्तम, बहुत ही सुंदर, आप सबका उमंग उत्साह बढ़ाया। हमारे बीच डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी पधारे हैं, मैं बहनों को कहूंगी आप बुके से और बैजेस लगा के इनका स्वागत करें। बुको बैजेस से स्वागत हुआ, नृत्य से स्वागत हुआ, भारतीय संस्कृति है। अब हम शब्दों द्वारा आमंत्रित करते हैं बहन माला जी को, जो आपका स्वागत करेंगी। राज्योग्नि बीके माला बहन जी, आपने युवा अवस्था में ही 1973 से अपना जीवन इस विद्यालय में जन जन की सेवा अर्थ समर्पित किया है। आप आज्ञाकारी, फरमान बरदार, वफादार और अथक मन शान सेंटर पर सेवा में उपस्थित हैं। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारीज के ह्यूमन विन महाराष्ट्र की कोऑर्डिनेटर हैं। आपके कुशल नेतृत्व में महाराष्ट्र अन्य राज्यों में यूथ रैली, ह्यूमन रैली, सोशल रैली, एजुकेशन रैली आदि आदि कई सेवाओं के निमित्त बन सफल रही हैं। आप रशिया, मॉरिशस आदि देशों की भी सेवाएं के निमित्त बनी हैं। आदरणीय माला बहन,
ओम शांति। आज के हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय महानुभाव, सभा में उपस्थित हमारी प्यारी बहनें तथा भाई, आज के समय के अनुसार आज इस महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण का एक विशाल सम्मेलन रखने की आवश्यकता पड़ी। आप सभी को विश्व भर के हालतों को समझते हुए अब ऐसा लगता है कि युग परिवर्तन हो रहा है। युग परिवर्तन के साथ हमारा परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। जहां खुद का परिवर्तन, वहां विश्व का परिवर्तन होगा ही। आप सभी को इस माउंट आबू में और ज्ञान सरोवर में इस विशाल हारमोनी हॉल के अंदर जो महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण का पहला जो स्वागत सत्र है उसमें आपको बुलाया गया। जिस दिन आपको निमंत्रण मिला उस दिन आपको एक आतुरता रही, एक लगन रही, एक सफर की एक कड़ी आपके अंदर ही चलती रही कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है। पर कहाँ जाना है? एक नए परिवर्तन के विशाल प्लेटफॉर्म पर जाना है। तो वो आखिर वह दिन आ गया, आप अपने सफर को पास करते हुए इतनी सुंदर माउंट आबू की पहाड़ियाँ आप सब देखते चलते यहाँ पहुँच गए। और शाम को जो बहुत सुंदर समय होता है और ऐसे समय पर इस स्वागत सत्र में आपका स्वागत भिन्न भिन्न रूप से हो रहा है। सबसे पहले तो मंच पर बैच पहनाते हुए, प्यार भरा गुलदस्ता देते हुए, बहुत सुंदर एक नृत्य के साथ हमें कुछ संदेश देते हुए हमारे तक कि आप शब्दों में भी स्वागत कीजिए। मुझे बहुत खुशी हो गई हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे क्या कहें, सबसे पहले तो मैं परमात्मा का ही स्वागत करती हूँ कि जिन्हों की प्रेरणा से जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया, क्योंकि विचार तो वही देते हैं, और उन्होंने ही बहुत सुंदर इस कार्यक्रम में हम उस परम पिता परमात्मा का हम सभी के बीच दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप भी बधारिए और इसमें सोने में सुहाग जरूर करेंगे। भगवान ने हमारा ये स्वागत स्वीकार किया। अब हम इस विशाल हमारे मंच पर आदरणीय हमारी प्यारी चक्रधारी दीदी जी, जो कि इस महिला विभाग के आप चेयरपर्सन हैं, वैसे आप दिल्ली के विशाल सेंटर पर और इतने दिल्ली विशाल सेवाओं में आप व्यस्त रहते और रशिया में भी आपने बहुत सुंदर मॉरिशियस अपना मास्को पीटरबर्ग आदि जहां पर आपने अपने सेवाओं के स्थान बनाए और आप जगह जगह पर जाकर भी अपनी सेवाएं देते हैं, तो आपकी प्रेरणा से ही आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया है। तो हम दीदी जी आपका बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ साथ आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ महिलाओं से ही परिवर्तन के साथ हमारे भाई की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि परिवार बदलता है तो समाज बदलता है। तो मंच पर उपस्थित हमारे करुणा भाई जी, नाम भी बहुत एक दया के सागर, करुणा के सागर के परमात्मा की संतान आप करुणा भाई जी, आप तो है ही करुणा के, परंतु आपने अपने मीडिया के माध्यम से विश्व के आत्माओं को परमात्मा का मैसेज पहुंचाने का प्रयास आप करती हैं और करते रहेंगे। भाई जी आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हमारी प्यारी शारदा दीदी जी, भक्ति के अंदर तो उस देवी का गायन है, शारदा देवी के गले में तो माला पड़ती है, आरती होती है, आराधना चलती है, और आज आपके समक्ष हमारी शारदा दीदी क्या आपको क्या प्रेरणा देंगे, तो मैं उनका बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप स्वीकार कीजिए। साथ में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मेहमान सिद्धि जी जोहरी, जो आप जोधपुर से आए हो, आपका अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आपने अपना भाग लिया और आप भी अपने विचार व्यक्त जरूर करेंगे। तो ऐसी मेरी प्यारी बहन आपका भी दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच में सुनीता मिश्रा जी, जो आप मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के आप वाइस चांसलर हैं और आप वैसे डॉक्टर हैं, तो आज आकर के आप दोनों शिक्षाएं जरूर लेंगे, वैल्यूज को स्कूलों में देंगे और जो अस्वस्थ है उनको स्वस्थ करने की भी प्रेरणा यहाँ से ले जाएंगे। तो आपका भी दिल से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और हमारी प्यारी मीठी सविता दीदी जी, जिनके प्रयास से ही ये कार्यक्रम बहुत परिश्रम किया, रात दिन करती है, आप सभी को भारतवर्ष में से जो भी आए या जो नहीं आए आएंगे उनके लिए उनका प्रयास चलता ही रहता है। और ऐसे हमारी आदरणीय सविता दीदी जी, जो आप इस कार्यक्रम में सभी के लिए बहुत ही व्यवस्था की है, आपकी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सविता दीदी जी आपको दिल से हमारी तरफ से स्वागत है, स्वागत है। और जिन्होंने स्टेज की सेवा, जो हमारी शक्ति दीदी जी हैं, जो आपके समक्ष अभी अपने बीच बीच में कोई विचार देते ही रहते हैं, आप सब, आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप जिस प्रेम से, जिस आतुरता से, जिस लक्ष्य से आप यहाँ पर सफर करते हुए आए, तो भगवान भी आपके स्वागत के लिए इस मंच पर उपस्थित है। आप जरूर उनका स्वागत के शब्द बोलो, उनकी भावनाएं आप सभी स्वीकार जरूर करना। परमात्मा की शुभ भावनाओं के थालियों में जो पुष्प रखे हैं, वो हरेक आप अपने स्वीकार कीजिए और यह लेकर के आप अपने घर में जाएंगे और सबको अपने शुभ भावनाओं से बहुत एक अपना घर परिवार को सुंदर बनाएंगे। यही मेरी शुभ कामना है। ओम शांति।
थैंक यू माला बहन जी। स्वागत करने वाली माला बहन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब हम आमंत्रित करते हैं अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी आदरणीय शारदा दीदी जी को। शारदा दीदी जी का मैं परिचय देना चाहूंगी। शारदा दीदी जी, आप एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता हैं। आप पिछले 52 वर्षों से भी अधिक समय से राजयोग शिक्षिका के तौर पर ब्रह्मा कुमारी एक गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्थान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपका जन्म राजस्थान में उदयपुर में हुआ था। आपने बीएड और एमए आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। प्रारंभ में आपने 2 साल नौकरी भी की है। आपका जयपुर में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क हुआ। आपने 21 वर्ष की अल्प आयु में ही अपना जीवन महानता की सेवा के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। उसके बाद आपने 5 साल विदेशों में अपना सहयोग दिया। साउथ ईस्ट एशिया के देश जैसे हांगकांग, सिंगापुर, श्रीलंका में आपने सेवाएं दी। कुछ समय आप अफ्रीका और यूरोप में भी सेवाएं दी। 7 वर्षों तक आप दिल्ली राजधानी में भी रहे और अभी पिछले 35 वर्षों से अंबावाड़ी गुजरात, उसमें उससे भी संबंधित सेवा केंद्र की संचालिका हैं। ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में भी नियमित ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के होने वाले कार्यक्रम की भी आप प्रशिक्षिका हैं। वर्तमान में आप महिला प्रभाग के भी राष्ट्रीय संयोजिका हैं। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, शारदा दीदी जी, शारदा दीदी जी, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई। तपते मौसम में बरसात की फुहार मिल गई, बरसात की फुहार मिल गई। आप आए हमारे बीच में कुछ इस तरह की रात में सूरज की एक किरण निकल गई, एक किरण निकल गई। आदरणीय शारदा दीदी जी,
ओम शांति। सम्माननीय मंच, और इस सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य पे भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से आप सभी भाई बहन यहां पधारे हैं, जो मानसिक सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य को भी अनुभव कर रहे हैं। बहुत सुंदर विषय पर हम ये पूरे 3 दिन चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर भी आप सभी सोच रहे होंगे किस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने किस लक्ष्य से उद्देश्य से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। वर्तमान समय पर अगर हम बहुत विशालता से विशाल दृष्टिकोण से चारों तरफ एक नजर दौड़ाएं, एक तरफ प्रगति और विकास के शिखर पर जा रहे हैं और दूसरी तरफ चारित्रिक नैतिक और मानसिक पतन और विकृतियां बढ़ती जा रही हैं और दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, ज्यों ज्यों दवा करते गए मर्ज बढ़ता गया। चूंकि वुमेन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट थीम है तो नारी को दृष्टि में रखते हुए एक नजर वर्तमान परिस्थितियों पर जाती है। एक तरफ कानून, तकनीकी व्यवस्था, बाह्य साधन, सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जाती है और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो न सिर्फ नारी में मानसिक विकृति बढ़ती जा रही है परंतु साथ साथ नर में भी उतनी ही विकृतियां बढ़ती जा रही हैं। वर्तमान समय जो वर्तमान की एक प्रज्वलित समस्या है, सास दामाद के साथ, ससुर बहू के साथ और रिसेंट इंदौर का बर्निंग प्रॉब्लम सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, इन सब समाचारों से आप अवगत हैं कितनी निम्न कोटि की विकृतियां आज हम देख रहे हैं। और वो सब देखते हुए एक सेकंड के लिए ये मन सोचने को मजबूर हो जाता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ऐसे समय पर गीता में दिए हुए अपने वचन के अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, उसको आना ही पड़ता है। वेयर आर द नट्स एंड बोल्ट्स इन समस्याओं के समाधान के लिए? क्या कानून इनफ है? वही मुझे सुरक्षा दे सकता है? कोर्ट मुझे सुरक्षा दे सकता है? पुलिस मुझे सुरक्षा दे सकता है? आवश्यकता है स्पिरिचुअली एम्पावरमेंट की, और वो स्पिरिचुअली एम्पावरमेंट के लिए जो भगवान ने गीता में वचन दिया जब जब धर्म की ग्लानी होती है अर्थात अधर्म बढ़ता है, और वो अधर्म कैसा बढ़ रहा है उसको हम सब जानते हैं और देखते हैं। उसका समाधान हमारे सामने स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी हमें थर्ड आई ऑफ विजडम देती है, और वो थर्ड आई ऑफ विजडम क्या करती है, इन दो आंखों से जो देखते हैं उसमें अच्छी बातें कम दिखाई देती है, विकृतियां अधिक दिखाई देती है। आज व्यक्ति, समाज एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर पहुंचा है, आकर खड़ा हुआ है, जो समय की मांग है, परिवर्तन के स्तंभ बने और अपनी उस मंजिल की तरफ जो हम सब चाहते हैं, सुख हो, शांति हो, हार्मनी हो, स्नेह हो, परस्पर विश्वास हो, वो कहां से पैदा होगा? तो और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक ही दिखाई देती है। या कभी व्यक्ति सोचता है समय आएगा, सब बदल जाएगा। टाइम विल नॉट चेंज, अ टाइम फॉर मी टू चेंज। अब चाबी कौन सी है जो ये ताला खुल जाए, समस्या का समाधान हो जाए, व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और विश्व एक सुंदर, सुदृढ़, स्वस्थ समाज बन जाए, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी हमें श्रेष्ठ, शुद्ध, समर्थ विचार शक्ति देती है, और ये बुद्धि रूपी स्टीयरिंग को दिशा निर्देश है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो समाधान है जो मानसिक रीति से अंतरात्मा की कुछ त्या सुषुप्त अवस्था में है, फिर से उन्हें जागृत किया जाए। आध्यात्मिकता व्यक्ति की सोच, विचार, उसका दृष्टिकोण, उसकी व्यवहार शुद्धि, उसका सकारात्मक चिंतन परिवर्तित करता है, उसे सशक्त बनाता है। और ट्रू सेल्फ क्या है उसको रियलाइज कराता है, जिसका आप सभी को कल सुबह परिचय मिलेगा कि वास्तव में मैं कौन हूं। वो मैं कौन की स्मृति जैसे ही आती है, भेदभाव समाप्त हो जाता है, दृष्टि में आत्मभाव आ जाता है, विचारों और भावनाओं में शुद्धि आ जाती है, आत्मिक दृष्टि बदल जाती है, आत्मसम्मान, आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ऐसे समय पर स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के हम मनुष्य आत्माओं को स्वयं की पहचान देते हैं, सहज राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा। तो राजयोग इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एनर्जी जो एक सोर्स ऑफ सुपर एनर्जी है, तो हम अपनी शुरुआत उसके साथ ही प्रतिदिन करें और अपने आप से पूछें कि वास्तव में मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं आत्मा क्या चाहती हूं। उस दर्पण के सामने खड़े होकर हम स्वयं का साक्षात्कार करें, अपनी अंतर की सूक्ष्म वृत्तियों को महसूस करें और अपने को कहें, अपना नाम लेकर, टुडे इज योर गुड डे, नो वन कैन डिफीट मी। अपनी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करें, अपनी विशेषताओं को, स्वयं को रिमाइंड कराएं, जो आप सभी को कल प्रातः है राजयोग शिविर का लेसन मिलेगा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। ये स्मृति हमारे एटीट्यूड को, हमारी भावनाओं को, हमारी दृष्टि को परिवर्तित करती है, भाई भाई की भावना जागृत करती है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक दूसरे के प्रति एक सम्मान की भावना जागृत करते हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस सारे विश्व के रचयिता स्वयं परमपिता परमात्मा इस साकार सृष्टि पर अवतरित होकर अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को ये राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा जीवन के अंदर किस प्रकार से डिवाइन वर्च्यूज को एडॉप्ट करें, मॉरलिटी एथिक्स को हम अपनाएं और उसके साथ साथ एक ऐसा स्वस्थ सुंदर समाज बनाएं जिस समाज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अशांति, दुख, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार नहीं हो, वननेस हो, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म हो। और ये वो धर्म ग्लानी का समय और अधर्म की वृद्धि हो रही है जब परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं और निकट भविष्य में पुनः जो इस भारत देश की महिमा थी, सोने की चिड़िया था, गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते थे, आज भाई भाई में भी वो अहिंसक भावना, निस्वार्थ प्यार नहीं, पुनः परमपिता परमात्मा अपनी इस दिव्य रचना के द्वारा ऐसी सुंदर दुनिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको आप सभी ये 3 दिन में न सिर्फ देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन साथ साथ अनुभव भी करते जाएंगे। तो यही आप सभी से शुभ भावना और शुभकामना है, आप इस श्रेष्ठ कर्तव्य में अपने विचारों को, सोच को एक नई दिशा, एक नई दृष्टि देकर जो हम सभी 3 दिन में यहाँ सुनेंगे, समझेंगे, उसको जीवन में धारण करके अपने परिवार, समाज, अपने वर्क प्लेस पर ला करके एक सुखमय दुनिया बनानी है, निर्विकारी दुनिया बनानी है, निरोगी दुनिया बनानी है, स्वस्थ समाज बनाना है, उसमें सहयोगी बनेंगे। ओम शांति।
धन्यवाद श्यावी, आपने बहुत ही सुंदर कैसे स्वयं का, परिवार का, पड़ोस का, समाज का, देश का और सारे विश्व का कल्याण करने हेतु इन शिव शक्तियों को परमात्मा ने बहुत बड़ा कार्य दिया है विश्व परिवर्तन का, वो कैसे हो आपने सुंदर शब्दों में बताया। अवश्य आपने ये समझा होगा और हर एक ने संकल्प लिया होगा कि जैसे ये हमारी दीदियां विश्व परिवर्तन में अपना मन वचन करण तन मन धन समय संकल्प श्वास लगा रही हैं, हम भी ऐसे ही इस कार्य में सहयोगी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा दीदी जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। आप मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर की वाइस चांसलर हैं, बाबा साहिब भीमराज अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, स्कूल ऑफ होम साइंस की डीन हैं, LOCF की चेयर पर्सन हैं। आपको इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी संस्कार सभी अपनाती हूँ, शिखर का मान बढ़ाती हूँ, कम करके मुझको आंको मत, कम करके मुझको आंको मत, मैं आज के युग की नारी हूँ, आज के युग की नारी हूँ। आदरणीय प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी।
एंड मंच पर पधारे हुए सभी महानुभव सभी को मेरा नमस्कार शुभकामनाएं, और जो भी श्रोते आए हुए हैं भाई बहन और जितने भी महानुभव आए हैं पधारे हुए हैं, ये हमारा कॉन्फ्रेंस में वुमेन्स के लिए है, उन्हीं को भी मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रहने वाली तो मैं उड़ीसा की, और हिंदी कुछ भी टूट फूट हिंदी भी होगा आप जरूर मुझे माफ करेंगे, क्योंकि ये मेनली ये रहा कि आप हिंदी में, बट आज 2 साल अच्छा हिंदी भाषण दे के मेरा काफी ठीक हो गया है पहले से हिंदी। और कुछ भी होगा हमारा कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए, तो ये मैं कहूँगी जो हमारा महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट, मैं ओनली वुमेन के ऊपर, क्योंकि हमारा A to Z सभी वुमेन मेरे पास है, ए में ऐश्वर्या, एंड में जीना दमन भी है, जेड में, तो सभी में हमारा सभी जगह में, क्योंकि हम जब सशक्तिकरण कहेंगे एम्पावरमेंट, महिलाएं पहले से ही सशक्तिकरण है, और वैदिक जो प्राचीन काल में इनका स्थान तो हमारा भारतवर्ष में सभी महिलाओं को बहुत अच्छा स्थान दिया गया था, और उसके बाद जैसे जैसे हमारा ये होता रहा परिवर्तन, उसी में जैसे प्राचीन काल में सशक्तिकरण के लिए हमारा आ जाता है ना 3-4 नाम ज्यादा सभी के मुंह में, गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, उपाला, ये सब जो है विदुषियां थे। और बहुत प्राचीन काल में हम नारी को जो जब हम कहते हैं कि वो नारी शक्ति, शक्ति तो है शक्ति, एंड उनके साथ सम्मान, और उन्हीं के साथ भी जो भी नारी का रहेगा वो आत्मनिर्भर होना जरूरी है। आत्मनिर्भर कैसे होंगे ना, हमारा शक्ति के देवी जैसे दुर्गा माता, सभी लोग दुर्गा सप्तशती हमने पढ़े, लेकिन उनको शक्ति देने के लिए वही हमारा भाई लोग सब आए, शिव जी दिए त्रिशूल, ब्रह्मा जी दिए, फिर प्रकृति किए में सुदर्शन चक्र दिए विष्णु भगवान ने, फिर ये सभी जितना कुरेतिया समाज में रूढ़िवादी समाज का जितना असुर प्रवृत्ति के जितना असुरें थे, हमारा रक्त बीज थे, चंडमून थे, महिषासुर सभी को नाश हुआ। फिर उसके बाद हमारा युग परिवर्तन होके अर्धनारेश्वर, वो एक रूप वुमेन एम्पावरमेंट का भी है, क्योंकि हम एक सिक्का के दो पहलू हैं। हम खाली महिला होके सब काम करेंगे वो नहीं, भागीदारी पुरुष के। तो उसी लिए पूजा पद्धति कोई भी आपका सभी में 50% हम देते हैं सहधर्मिणी को। सो आप ऐसे भी क्रिया करिए, कोई भी पूजा करिए, वो एक अच्छा एक बदलाव वो लाया गया था। फिर भारतीय महिलाओं में फिर ऐसे चाहे कि वो एम्पावरमेंट हुआ शिक्षा के द्वारा। शिक्षा जो है वो एक ऐसी स्रोत है जो कि स्वावलंबन करेगा, उनको आत्मनिर्भर बनाएगा एंड उसी के बल पर वो आगे जाएंगे। तो आज के जो नारी वो उसी में सभी में वो है, वो जितने राजनैतिक क्षेत्र में आप देख लीजिए, पॉलिटिक्स में भी हमारे साथ सभी का नाम आएगा। बट अभी रिसेंट जो है मुझे बहुत पसंद है निर्मला सीतारमण जी का, उन्हीं का पहले भी इंदिरा गांधी हैं, सुषमा स्वराज हैं, बहुत सारे। उन्हीं का एक प्रेरणा स्रोत वो ऐसे नहीं है, उन्हीं का जो बोलने का जज्बा वो एक बहुत अच्छा रहा। उसके साथ साथ शिक्षा और सामाजिक सेवाओं जब आया, हमको हमेशा याद आती है किरण बेदी जी IPS, वो पहला वो उनका भी बहुत अच्छा रहा संघर्ष और कैसे एम्पावर करेंगे महिलाओं को उसी के ऊपर भी। उसी के साथ साथ मुझे मेधा पाटेकर जो कि नर्मदा आंदोलन का वो एक अच्छा भूमिका निभाए थे। फिर खेल जगत में भी मुझे बहुत पसंद है सानिया मिर्जा, सो ऑल्सो हमारा साइना नेहवाल, और उसके साथ साथ भी हमारा मेरी कम, उनका भी बहुत अच्छा। एंड आजकल तो वुमेन सभी फील्ड में, खेल में भी, खेल कूद में, हमारा उदयपुर में जब क्रीड़ा मंडल वो 47 डिफरेंट स्टेट से खेल का आयोजन, सभी महिलाएं हैं, तो उन्हीं के साथ साथ भी कला साहित्य विज्ञान प्रायोगिक सभी क्षेत्र में वो भी हमारा, जैसे सूर का देवी माँ जो लता मंगेशकर, वो भी देखिए वुमेन एम्पावर का एक वो एक महान हस्ती। उन्हीं के साथ साथ हमारा सभी जो एक वो जो कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए दीपा मेहता, मैं एक एक अभी का भी जो ले रही हूँ, पुराने तो है ही, ये सभी वो बहुत अच्छा में वो करके और शिक्षा के ऊपर में भी आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता और विकास जो कि मैडम भी कहे शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सभी विकास में महिलाओं का होना बहुत है एंड वो बहुत खूबी से निभाते हैं ये, क्योंकि आपका उन्हीं का जो डिसीशन पावर गोल ओरिएंटेड, हमेशा वो जान लेते हैं कि हमको कौन सा कार्य करना है, शॉर्ट टर्म गोल वो है ना, मीडियम ना लॉन्ग टर्म, सभी में। और इतना अच्छा रूप से एक एक चीज को वो निभाते रहते हैं, वो आश्चर्यजनक है, प्रेरणा स्रोत भी है और आश्चर्यजनक है। तो हम कहेंगे कि भारत सरकार में भी महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं बना गया है, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया है, महिला समृद्धि योजना सुकन्या योजना और महिला हेल्पलाइन, और प्रधानमंत्री जी का भी बहुत सारे महिलाओं का योजना कैसे उनको करे, वो आरक्षण वो भी एक आजकल कह रहे हैं, बट महिलाओं के लिए आरक्षण करना कोई जरूरत नहीं। जब हम इतने तक हम आ चुके हैं तो वो आरक्षण क्या है, सभी के भागीदारी में हम हाथ को हाथ आगे करके सभी काम कर पा रहे हैं। मुझे अभी वो भी याद आ रहा है जो सुनीता विलियम जी का, वो अंतरिक्ष वो गए थे, उनका सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। वो एक ही बस वो गए हुए थे 6 महीना के लिए, भोजन राशन रहना सब खत्म हो गया, बट वो इतना जज्बा में वो 22-23 के जी रिड्यूस हो गए। उन्हीं के लिए जो खाने का पूरा खत्म हो गया, वो टैबलेट खा के जो कि वो स्क्वीज करके थोड़ा बहुत बचा था उसी में वो जीविका निर्वाह किए। और कोई होता उन्हीं के साथ भी, उनके साथ वो दिए थे वो, बट ऐसे परिस्थिति सभी क्षेत्र में महिलाएं और वुमेन का वो बहुत है। और ये हम स्पिरिचुअलिटी के में भी हम इनको आगे कर सकते, कैसे ना, मेडिटेशन योगा मोटिवेशन एंड ऑल्सो हमारा इनर शक्ति, हाउ टू कंट्रोल दैट पावर। कंट्रोल हम अपने रहेंगे तो सब कुछ हम चुप होके एनर्जी कंजर्व, हमारा अपने अंदर से वो एनर्जी आएगा जो कि विश्व को वो एक ब्रह्मांड को वो एक शक्तिशाली एक ये हम कह सकते हैं एक विश्व गुरु महिलाओं का भी हो जाएगा। तो आरक्षण जो कह रहा है, अभी हमारा आरक्षण यहाँ पे ओनली 33% वो खाली वो भी है पंचायत राज में और किसी में नहीं है, तो वो अभी वो जरूरत भी नहीं है। स्वावलंबी हम ऐसे भी हैं, कर्मठ हैं, हम लोग आगे कर जाएंगे, उसी में कोई भी नहीं। बस ये हमारा लास्ट 2 शब्द है, ऑल पावर इज विद इन अस, वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। एंड वो है हमारा किसी में भी, जय हिंद जय भारत। हमारा साथ भी आप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी ओम शांति नमस्कार।
धन्यवाद बहन जी का, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने नारी की किस प्रकार से उसके अंदर सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति प्लस कंट्रोलिंग पावर होती है, जो कहीं भी कैसे भी अपने आप को एडजस्ट कर पाती है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी करुणा भाई जी को। करुणा भाई जी, आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जीश्वरीय विश्वविद्यालय के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मीडिया विंग के अध्यक्ष हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के आप सेक्रेटरी हैं। ब्रह्मा कुमारी जी के पब्लिक रिलेशंस के आप डायरेक्टर हैं। पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल के फाउंडर हैं, हेड हैं। आप ब्रह्मा कुमारी जी के मल्टीमीडिया के चीफ हैं 50 सालों से। वरिष्ठ राज्योगी हैं। आपको कई अवार्ड से नवाजा गया है। ऐसे प्रतिभा के धनी और विभिन्न सेवाओं को संभालने वाले राज्योगी करुणा भाई जी के लिए उनकी प्रेरणा सुनेंगे। करुणा भाई जी के लिए मैं कहना चाहूंगी, करुणा है जिनके दिल में, करुणा की मूरत है वो, करुणा के सागर के वो बच्चे, करुणा ही बिखेरते हैं वो। आदरणीय करुणा भाई जी।
सत्यम शिवम सुंदरम, मुझे अत्यंत हर्ष है जो आज मैं हमारी बहनें माताएं के लिए विशेष ये प्रोग्राम रखा गया है, कॉन्फ्रेंस रखा गया है, तो मुझे सदा ही याद आता है जो पहली बार मैं अबू पर्वत आया था फाउंडर से मिलने 1960 में। तब मुझे पिताश्री जी के मिलने से पहले मातेश्वरी जी से मिलने का सौभाग्य मिला। तो माँ क्या होती है तो उसका हम सभी जानते हैं। जो भी बच्चे आज जिस पोजीशन में भी पहुंचे हैं, परंतु पहली गुरु जो है हमारे, जो पहले दिन से हम बच्चों को संभालते हुए, हम जब तक बड़े हो इस विश्व में अपने स्थान को बनाने से पहले जो संस्कार हमको मिला था, तो मुझे आज भी याद है उसी संस्कार ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। कई बार मेरे से पूछते हैं तो आप बहुत खुश है, इतने सालों से आप हैं तो इसका क्या रहस्य है, तो मैं सदा ही कहता हूं तो मैं हमारी बहनें माताओं द्वारा एक विश्व संस्थाओं को संचालित कर रहे हैं, ऐसी बहनें माताओं के सेवा में मैं हूं, अपने हैं, तो यही मेरा खुशी है। क्योंकि जो संस्कार बचपन से अपने बच्चों को देते हैं तो वही हमारे सारे जीवन में काम आता है। दूसरी बात, जब हम बड़े होते हैं तो आध्यात्मिक में या जो संत समाज से हम आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास करते हैं, क्योंकि माँ ने हम लोगों को पूजा पाठ मंत्र सब सिखाए हैं। तो इसीलिए ईश्वर के प्रति भारत के हर व्यक्ति को, आप किसी गांव में भी जाएंगे तो कैसे हैं, कहते हैं ऊपर वालों की कृपा है। तो ये संस्कार देने वाले माताओं के लिए आध्यात्मिक में अनजाने एक मंत्र जरूर कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। ये नहीं कहते हैं त्वमेव पिताश्च माताश्च, नहीं, पहले मां ईश्वर है और पिता का रूप दूसरा है। तो इसलिए मुझे अत्यंत हर्ष है, तो मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हूं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हूं। दूसरी विशेषता मैंने ये देखी, पिताश्री मातेश्वरी और हमारे जो बड़े दादियां हैं सब मिलकर के लगभग 380 बहनों को एक एंजल्स के रूप में इस भारत में सेवा के लिए, विश्व की सेवा के लिए तैयार किए थे। आज भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसमें लगभग 50,000 बहनें अनेक स्थानों पर, गांव से लेकर न्यूयॉर्क के हमारे एक 365 एकड़ का जमीन वहां का सरकार ने हमको दिए है, जो वो सेवा वहां कर रहे हैं, पीस विलेज कहते हैं उसको। हजारों सेंटर सारे विश्व में है इस समय पर, एक विश्व संस्था के रूप में एक माताओं की संस्था कैसे हुई, इसके पीछे क्या रहस्य है, तो वो हम बाई कह सकते हैं वो, क्योंकि मैं हेडक्वार्टर में हूं। हम लोगों को 4 बजे जगाया जाता है, 3:30 बजे भी बजता है, परंतु 4 बजे हम सब एकत्रित होके वहां मेडिटेशन के लिए आते हैं। सच बताऊं, जो बहनें 2:30 बजे तीन बजे साढ़े तीन बजे बहनों की ही लाइन देखता हूं, भाई बहुत थोड़े होते हैं। तो ये संस्था आज विश्व संस्था बनी है तो बहनों की तपस्या है। तो मैं यही कहूंगा कि आज आप सभी, मैं कभी कभी सोचता हूं जबकि संस्था ही बहनों का नाम से है ब्रह्मा कुमारी, माताओं की क्यों आपने एक कॉन्फ्रेंस अलग कर दिए हैं। तो मुझे खुशी है जो आज आप सबको मैं इसीलिए देख रहा हूं कि कॉन्फ्रेंस बनी है। तो आप सब से भी हमारी निवेदन यही है, भले हमारे पहले स्पीकर ने कहा कि भाई हम कोई आरक्षण के लिए हम ये नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हां जी, आपका आदर्श बहुत अच्छा है, परंतु आज सारे देश में, मैं राजस्थान में हूं, राजस्थान सरकार ने भी बेटी होती है तो उसके लिए हमको क्या क्या करना है, तो अभी मैं पेपर में देख रहा हूं हर प्रकार से उनको सुविधा देने के प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ईश्वर ने भी इस बात को 1936 से, माताएं ही ये सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये लक्ष्य रखते हुए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम दिया। और आज सचमुच हमारे बहने, जैसे हम किसी से पूछते हैं आपको गर्भ में कैसे चल रहा है, कहते हैं हमारा घर बहुत अच्छा है, पर आप तो सुबह निकल जाते हैं रात को पता नहीं कब पहुंचते हैं, तो घर में बहुत अच्छा कौन कर रहे हैं। नहीं तो सदा ही जो काम करते हैं या पैसा कमाते हैं तो बच्चों के लिए हो, बच्चियों के लिए हो, यही लक्ष्य रखते हैं। एजुकेशन जितना हम दे सकते हैं दे देंगे। कौन सी संस्था, कौन सी यूनिवर्सिटी है आज जो शिक्षा चाहिए इस समय पर, वो शिक्षा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दे रही है। कई बार कहते हैं ये विश्वविद्यालय कैसा है, नहीं, विश्व अलग है विद्यालय अलग है। ये विद्यालय के रूप में सारे विश्व में सभी धर्मों को ये शिक्षा दे रहे हैं, इसीलिए लगभग 140 देशों तक हमारे बहनें आज ये शिक्षा दे रहे हैं। पांच बातें सिखाया जाता है, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और कर्म, क्या करे क्या न करे, और लास्ट में आप सब करना चाहते हैं अच्छा, तो इसके लिए एक ही रास्ता है जो मनोबल, जिसको बहन जी ने भी कहा सर्वशक्ति हमारे अंदर है पर हमको करना होगा। तो माताएं बहनें जितना निर्माण रूप से जो सेवा कर सकते हैं वो भाइयों में वो विशेषता कम है, क्योंकि धन का और थोड़ा सा अहंकार का भी उन्होंने आ जाता है। तो इसलिए मैं फिर से वंदे मातरम कहूंगा और शिव शक्तियां इस समय पर सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं और उनकी इस संस्था में आप आए हैं। आपसे नम्र निवेदन है, भले किसी क्लास किसी भी कारण से मिस भी हो जाए, पर सुबह का जो अमृत वेले का तो राजयोग का अभ्यास जरूर करके आप शक्ति प्राप्त करके जाएंगे, ऐसी आशा करता हूं। ओम शांति।
धन्यवाद आदरणीय करुणा भाई साहब का। ये सच है कि उस निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने सबसे पहले, जबकि वो टाइम था कैसे पर्दे नशीन महिलाएं होती थी, परमात्मा ने सबसे पहले नारी शक्ति को सशक्त किया और उन कन्याओं, माताओं, बहनों को जिन्होंने लगभग 80 वर्ष तक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को संभाला, जिनको हम दादियां कहते आई हैं, तो वही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आज भी जो सभी कन्याएं माताएं सशक्त होकर के सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपना सब कार्य जिम्मेवारियां संभालती हैं। धन्यवाद भाई साहब का। मैं बहनों को कहूंगी, हमारी सुनीता मिश्रा जी को सौगात देंगी, जल्दी जाना है, आदरणीय चक्रधारी दीदी और आदरणीय सविता बहन। अब मैं आमंत्रित करती हूँ राज्योगिनी ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी जी को, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर ह्यूमन विंग ब्रह्मा कुमारी की हैं। आपका परिचय देना चाहूंगी। आप महिला प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर, वरिष्ठ राज्योगी का शिक्षिका आबू एवं ज्ञान सरोवर परिसर कार्यक्रम की मुख्य निर्देशिका हैं डॉक्टर सविता जी ने। राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। 1990 में आपने पांडव भवन डिस्पेंसरी में डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी। आप हमारी पूर्व मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि जी की व्यक्तित्व चिकित्सा व सहायक रही हैं। आपकी बचपन से ही अध्यात्म में गहरी सोच रही है। 1979 में आप संपूर्ण रूप से समर्पित होकर ईश्वरीय यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान समय आप महिला प्रभाग के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का संयोजन एवं आयोजन करती हैं। आपने भारत के सभी प्रांतों में, विदेश में, भिन्न भिन्न देशों में सहज राज्योग एवं स्वास्थ्य जीवन शैली के बारे में लोगों को जागरूक करने की व शिक्षित करने के लिए भ्रमण किया है। आपने मेडिकल विंग द्वारा आयोजित लगभग सभी सेवाओं में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वर्ष 2023 में आपको ग्लोबल एलायंस एंड फॉर ह्यूमन एम्पावरमेंट में संस्था यूएस में के द्वारा ह्यूमन ऑफ एक्सीलेंस एडवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, जोरदार ताली बजा करके आप सम्मान कर सकते हैं। सविता बहन जी के लिए मैं कहना चाहूंगी, नारी जाति का सम्मान है आप, नारी जाति का सम्मान है आप। अनुभवी, अचल, अडोल और सुजान है आप। परमात्मा घर की, परमात्म घर की शान है आप। तभी तो शिव शक्ति नाम है आपका। शिव शक्ति आप सभी हैं, विशेष आप भी हैं, और मैं केवल शक्ति और बाद में शिव शक्ति भी हूँ। अभी तभी तो शिव शक्ति नाम है आपका, शिव शक्ति नाम है आपका आदरणीय डॉक्टर सविता जी।
ओम शांति। आप सभी भी प्यार से एक बार फिर से बोलेंगे ओम शांति। मंचासीन हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, श्रीमती सिद्धि जौहरी जी, माला बहन, शक्ति बहन और सभा में उपस्थित भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारी हुई आप सभी महिला शक्ति एवं भाई, आप सभी का ज्ञान सरोवर के इस मनोरम परिसर के इस हार्मनी हॉल के इस महिला सम्मेलन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन। और आपके स्वागत में मैं कहूंगी, गगन के शान तारे हैं, चमन की शान बहारे हैं और इस हार्मनी हॉल की शान में चार चांद लग गए हैं जो आप सभी यहाँ पधारे हैं। महिला प्रभाग हर वर्ष सम्मेलन आयोजित करता है और उसका उद्देश्य है महिलाओं में आध्यात्मिक एवं नैतिक जागृति लाना। आज हम देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण के तो बहुत कार्य हो रहे हैं। सरकार भी अनेक योजनाएं बनाती रहती है, अनेक गैर सरकारी संस्थान हैं, वो भी महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं, जिससे उनको सामाजिक अधिकार मिले हैं, कानून भी बने हैं उनकी सुरक्षा के लिए, राजनीति में भी उनकी सक्रियता बढ़ी है, जो अभी हमारे वीसी मैडम सुना रहे थे, और आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर वो हो रही हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि समाज में उनका उचित सम्मान और बराबर की भागीदारी नहीं है, अभी भी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, अभी भी उनके प्रति जो होने वाले अपराध हैं उनकी संख्या हर वर्ष बढ़ती ही जाती है। उसका आंकड़ा अगर देखा जाए तो बढ़ता जाता है। आज भी वो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, दहेज के लिए मानसिक रूप से शारीरिक रूप से प्रताड़ना भले ही पहले से कम हुई है, लेकिन पूरी तरह से वो समाप्त नहीं हुई है। और उसका कारण है कि समाज की जो सोच है, मानसिकता है, वो महिलाओं के प्रति अभी पूरी तरह से परिवर्तन नहीं हुई है। और उनमें भी जो अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागृति होनी चाहिए, या जो आत्मबल आत्मसम्मान की स्थिति होनी चाहिए, वो भी कहीं कम है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए महिला प्रभाग जो है वो इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं के लिए आयोजित करते रहते हैं। जैसे ये सम्मेलन, आज का जो सम्मेलन है, ऐसे ही प्रतिवर्ष मुख्यालय में एक या दो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, और अब तक लगभग ऐसे 40 सम्मेलनों का आयोजन यहाँ किया जा चुका है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट महिलाएं जो प्रतिनिधित्व करती हैं उन्हें आमंत्रित किया जाता है, और जो यहाँ से परिवर्तन ला करके फिर अपने संपर्क में जो भी महिलाएं आने वाली हैं उनको भी वो प्रेरित करते हैं। और इसके साथ साथ पारिवारिक मूल्यों से संबंधित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ है, जिसे सुखी पारिवारिक जीवन के लिए मूल्य। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम समय समय पर ये प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में जो सुख शांति का माहौल होना चाहिए उसका अभाव होता जा रहा है, नई पीढ़ी के नैतिक मूल्यों में बहुत तेजी से गिरावट आई है। तो परिवारों में स्नेह, सहयोग, एकता, मधुरता बनी रहे, उनमें व्यवस्था स्वच्छता हो, हरेक सदस्य एक दो को सहयोग करके उन्नति को प्राप्त करें, इस तरह की शिक्षा उन्हें प्रदान की जाती है। 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, तो इस अवसर पर भारत के सभी सेवा केंद्र, जो भी ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र हैं, वो स्वतंत्र रूप से या फिर महिला संगठनों के साथ मिलकर या क्लबों और आयोग के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विशेष रूप से हर वर्ष एक विषय लिया जाता है और उस विषय को लेकर के उनका सशक्तिकरण हो, वो उनके लिए उपयोगी हो, इस तरह से ये कार्यक्रम होते हैं। और जो भी सेवाएं होती हैं उनके जो समाचार हैं वो महिला प्रभाग की एक समाचार पत्रिका है, नारी शक्ति, उसमें प्रकाशित किए जाते हैं, जो हर 3 मास में प्रकाशित की जाती हैं, और उसमें महिलाओं के लिए उपयोगी लेख भी होते हैं। तो आपको अपने फाइल फोल्डर में वो नारी शक्ति पत्रिका मिली भी है। और ऐसे ही महिलाओं को चित्रों से हम इस विषय को सुगमता से समझा सकें, उसके लिए एक चित्र प्रदर्शनी बनी हुई है, उसमें 13 चित्र हैं। और खासकर जब विशेष आयोजन या अभियान किए जाते हैं तो फिर ये चित्र प्रदर्शनी लगाई जाती है, जो महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर बनी हुई है। समय समय पर महिलाओं के लिए महिला प्रभाग के द्वारा अभियान भी निकाले गए हैं। 2001 में जब भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था, तब अखिल भारतीय महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान ये पूरे भारत वर्ष में निकाला गया, जो 9 राज्यों से जिसका शुभारंभ हुआ, उसमें मुंबई, नागपुर, पोरबंदर, बरहमपुर, इलाहाबाद, सिंगरौली, कांगड़ा, बेंगलोर आदि स्थानों से निकलकर लगभग 2 मास तक ये अभियान अनेक शहरों कस्बों से होता हुआ दिल्ली में उसका भव्य समापन वहाँ तालकटोरा स्टेडियम में किया गया। और उसमें जो विषय लिए गए, यानी जो उद्देश्य था इसका, भारत सरकार ने विषय दिए थे नैतिकता, शांति, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा महिलाओं के लिए। तो फिर परिवार में सुख शांति की स्थापना में उनका योगदान क्या हो, कैसे हो, उसका उनको बोध कराना, स्वास्थ्य के नियमों की उनको जानकारी देना, फिर महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर के उनकी आंतरिक शक्तियों का उनको बोध कराना, तो इस विषय को लेकर के उनके अंदर जागृति लाई गई। और आध्यात्मिक रूप से भी राजयोग शिविरों का आयोजन करके उनको सशक्त किया गया। तो ये लगभग लाखों महिलाओं तक ये अभियान पहुंचा। और उसके पश्चात 2014 में नारी सुरक्षा अभियान निकाला गया। और उसका कारण था कि उस समय भारत में एक ऐसी घटना हुई, हम सब जानते हैं दिल्ली में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे अभी शारदा दीदी ने भी उसके बारे में जिक्र किया कि कैसी मानसिक विकृति है आज हमारे समाज में जो बढ़ती जा रही है, तो जिसके कारण भारत का पूरे विश्व में एक शर्मनाक घटना जिसे कहेंगे वो उस रूप में हुआ। तो फिर विदेश की तरफ से ही हमारे लिए, क्योंकि यूएन में भी महिलाओं के लिए अपने प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये संस्था यूनाइटेड नेशंस से भी जुड़ी हुई है, तो वहां से फिर ये प्रस्ताव आया कि हम भारत में इस तरह का अभियान निकालें। तो नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान 2014 में लगभग 2 वर्ष तक पूरे भारत वर्ष में निकाला गया। ऐसे ही बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किया, तो उसी को ही मजबूती देने के लिए ये बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान विद्यालय के द्वारा, प्रभाग के द्वारा निकाला गया। और इन दोनों अभियानों का उद्देश्य था कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए देश, परिवार और समाज में जागृति लाना, उनकी सुरक्षा के लिए या उनके बचाव के लिए विशेष रूप से, और सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए जन जन को प्रेरित करना, स्वयं ही उनको अपनी सुरक्षा के लिए सशक्त बनाना। फिर हम देखते हैं कि आज जो भी हमारे मीडिया हैं, जो मानव मन में वो उत्तेजना पैदा करने वाले अश्लील विज्ञापन या साहित्य या जो सिनेमा है, उन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सके, ऐसी जागृति समाज में लाना, फिर उनमें स्वयं में मनोबल, आत्मबल विकसित हो, उसके लिए राजयोग शिविरों का आयोजन, जो आध्यात्मिक ज्ञान और योग की शिक्षा है वो भी उनको दी गई। और बाद में 2023 में हमारी माननीय राष्ट्रपति, जो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा पारिवारिक सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ सन 2023 में दिल्ली में अपना ORC ओम शांति रिट्रीट सेंटर, एक ज्ञान सरोवर की तरह ही ऐसा एक कैंपस है, वहां पर उनके द्वारा उसका शुभारंभ किया गया। तो परिवारों में सशक्तिकरण हो, परिवारों में सुख शांति आए, उनकी समस्याएं समाप्त हों, बच्चों की समस्याएं और उनके समाधान परिवारों में कर सकें, ना इस लक्ष्य को लेकर के अभियान चला। और अभी इस वर्ष जो अभियान है वो एक प्रोजेक्ट के रूप में है, सुखी और स्वस्थ परिवार योजना। तो इस तरह से ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जैसे भाई जी ने भी कहा कि ये महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाने वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, जो पूरे विश्व में, मैं कहूंगी अपने आप में, एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके सभी सेवा केंद्रों का, जैसे कहा 140 देशों में 8000 सेवा केंद्र हैं, और इन सभी सेवा केंद्रों की संचालिका और उनका जो प्रशासन है वो बहनों के द्वारा ही किया जाता है। और जैसे बताएं 50,000 समर्पित बहनें अपने तन मन धन को समर्पित करके वो विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में अपना योगदान दे रही हैं, और लाखों भाई बहनें जो परिवारों में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, अनेक व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, वो उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन में अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंच बना रहे हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो मुख्य शिक्षा है उसमें आत्मज्ञान महत्व रखता है, जैसे शारदा देवी जी बता रहे थे। आत्मज्ञान हमें देह भान से ऊपर उठाता है, क्योंकि हम केवल भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो चेतना आत्मा है, और आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है। तो जब ये हमें एहसास होता है या जब ये स्मृति आती है, तो आत्मिक दृष्टि वृत्ति से आपस में एक दो के प्रति स्त्री पुरुष में वो जो अधिकार भावना या वो जो भेदभाव और शोषण होता है वो समाप्त होकर के एक दो के प्रति सम्मान, सहयोग, स्नेह और समानता का भाव आने लगता है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम इसे अनुभव करते हैं। तो जो भी महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं वो तब तक समाप्त नहीं हो सकती, या उनके प्रति जो होने वाले अपराध हैं वो तब तक समाप्त नहीं हो सकते जब तक उनके प्रति हमारे सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता है। और यही कार्य जो है वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है। तो यहाँ आप सभी पधारे हैं इस सम्मेलन में, तो हम अपेक्षा रखते हैं, और साथ साथ में सभी के प्रति शुभ भावना भी है कि आप भी स्वयं में ऐसा परिवर्तन ला करके समाज में अन्य महिलाओं के प्रति भी उस परिवर्तन में हम सहयोग देंगे। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के महिला प्रभाग द्वारा जो बीते वर्षों में मुख्य सेवाएं हुई हैं उसकी एक झलकी प्रेजेंटेशन के रूप में हम आपको दिखाएंगे। लगभग 5 मिनट का वो प्रेजेंटेशन है जो आपको दिखाया जाएगा। ओम शांति। 2024-25 में की गई सेवाओं की झलकियां, 554 कुल कार्यक्रम हुए सभी सेवा केंद्रों पर, और उसके लाभ लेने वालों की संख्या 1,16,376। और दिल्ली में भारत मंडपम में महिलाओं का एक मेगा प्रोग्राम हुआ, जिसमें दिल्ली NCR के लगभग 1500 गणमान्य महिलाओं ने भाग लिया। इसका विषय था वर्तमान संकट काल में महिलाओं की भूमिका, जो मई में आयोजित हुआ था। और 4 जुलाई को ज्ञान सरोवर में सम्मेलन किया गया, जिसका विषय था विश्व परिवर्तन की नींव, सशक्त महिला। और 1 से 5 अक्टूबर 2024 ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका विषय था संस्कृति की संरक्षक नारी। मानसरोवर में भट्टी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने बीके माताओं के लिए और टीचर्स बहनों के लिए आयोजित किया गया था। पारिवारिक सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 9 फरवरी 2023 को हुआ, जिसमें 722 कार्यक्रम हुए। 1,48,257 लोगों ने इससे लाभ लिया, और ये विभिन्न सेवा केंद्रों द्वारा इस अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम हुए उसकी झलकियाँ हम देख रहे हैं। ये इंदौर का है। फिर तेलंगाना में तो राज्य स्तरीय 1 महीना अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ हैदराबाद में हुआ। विभिन्न जिलों में हुए कार्यक्रम, और समापन इसका 16 सितंबर को हैदराबाद में ही किया गया। अगस्त
2023 को ज्ञान सरोवर में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। शांतिवन में भी 9 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। संबलपुर ओडिशा में भी ये कार्यक्रम हुआ। और फिर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल ओपनिंग की वुमेन द फ्लैग बेयरर ऑफ इंडिया। बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान 2016-18 में प्रारंभ किया गया। कटक में माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो उस समय गवर्नर थे झारखंड के, वो पधारे थे। उसमें ये विभिन्न कार्यक्रम जो अनेक शहरों में किए गए। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए भी एक अभियान हुआ, ORC में उसका शुभारंभ किया गया। नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान 2014-15 में पूरे भारतवर्ष में निकाला गया। उसके अंतर्गत हुए जो भी कार्यक्रम है उनकी झलकियां, ऊना, पोरबंदर, जबलपुर, इंदौर और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 में सेवा केंद्रों में जो सेवाएं हुई उसकी कुछ रिपोर्ट। दिल्ली डेरावाल नगर और विशेष शांतिवन में विश्व प्रसिद्ध सर्जन पद्मश्री डॉक्टर पी रघुराम ने मेगा स्तन कैंसर जागरूकता सेशन लिया, जिसमें लगभग 5000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया और उसका एक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। तो एक विशेष कार्यक्रम रहा 8 मार्च के अवसर पर शांतिवन में। पाली में संयुक्त रूप से शिव जयंती और 8 मार्च का कार्यक्रम किया गया। मुंबई घाटकोपर में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से सखी मिनीथॉन आयोजित किया गया, जो बहुत ही सफल रहा। जोधपुर, भरतपुर, आसाम, बरेली, बारसी, ओम शांति रिट्रीट सेंटर और दिल्ली के अन्य केंद्रों पर भी महिला दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम हुए, जिसकी झलकियां आप देख रहे हैं। नागपुर, चंडीगढ़, नागपुर में विशेष रूप से सुदेश दीदी का जाना हुआ और हैदराबाद में कार्यक्रम हुआ। अंबाला, आगरा, अलीगढ़, हिसार में विशेष स्वर्णिम भारत महामेला उसका आयोजन हुआ। उसी में ही 8 मार्च के निमित्त महिलाओं का एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। कुल्लू, अम्बेजोगाई, मुलुंड, हाथरस, भुवनेश्वर यूनिट 1, भुवनेश्वर न्यू फॉरेस्ट पार्क, जयपुर राजा पार्क, ग्वालियर, इंद्रगंज, सोलन में कार्यक्रम के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। राजकोट, नेपालगंज, वाशी, नवी मुंबई, फरीदाबाद, छतरपुर, भुज, धारवाड़, दीव, ईटानगर, हजारीबाग, जम्मू, खरगोन, कुरुक्षेत्र, पंढरपुर, मंडला, मेरठ, महू, मोहाली, मुरैना, पानीपत, पन्ना, सूरतगढ़, तिनसुखिया, सफीदों, पोरबंदर, सुनारी, रतलाम, रावतसर, बड़ोदरा, वस्त्रापुर, सिंभावली, शाहकोट, शोलापुर, सूरत मजूरा गेट आदि स्थानों पर कार्यक्रम हुए। और अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, जिसका विषय लिया गया स्वस्थ एवं स्वच्छ परिवार के लिए माताओं की भूमिका के उपलक्ष्य में भी सेवा केंद्रों पर कार्यक्रम हुए, जिसकी कुछ झलकियां रायपुर छत्तीसगढ़ में, इंदौर, बेंगलुरु बसवनगुड़ी सेवा केंद्र, भरतपुर, बेंगलुरु कुमारा पार्क, तुमसर, सायन, पालनपुर, सादाबाद, वर्धा, टोंक, भोपाल, जयपुर। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जनवरी को होता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में भी सब सेवा केंद्रों ने कार्यक्रम किए, स्कूलों में, कॉलेज में, सेवा केंद्र पर, औरंगाबाद, अंबिकापुर, चौपड़ा पारा, लातूर, जबलपुर। कुछ 8 मार्च को अपनी बहनों को सम्मान भी मिले। थैंक यू। ओम शांति। महिला प्रभाग के अंतर्गत 2024-25 में की गई सेवाओं की झलकियां।
थैंक यू सविता बहन जी। कैसे जन जन को, विशेषकर माताओं को सशक्त किया जाए, ये बाबा का संदेश दिया जाए, तो जगह जगह पर ये प्रोग्राम हर वर्ष चलते रहते हैं। तो धन्यवाद अपनी डॉक्टर सविता बहन का। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी अंत तक बैठे रहें, लास्ट में परमात्मा के घर से आपको गॉडली गिफ्ट मिलेगी, इसलिए कृपया अंत तक सब बैठे रहें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सिद्धि जोहरी, मोटीवल नेशनल मोटिवल स्पीकर हैं आप। आपका परिचय देना चाहूंगी। आप मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक हैं। आप यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम के इंडो नेपाल ग्रीन मिशन की श्री कल्पत्रु संस्थान की ब्रांड अम्बेसडर हैं। आप नेशनल यूथ काउंसलिंग ऑफ इंडिया में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप बहुत सारी कंपनियों के ग्लोबल, जैसे कि मिस इंडिया, मिस एंड मिसिज इंडिया यूनिवर्सल की ब्रांड अम्बेसडर हैं। आपके 100 से भी अधिक अवार्ड जीते हैं आपने, जिसमें डॉक्टर एजी पीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, 2020 भारतीय अटल रत्न अवार्ड आदि आदि शामिल हैं। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, आए हो हमारे बीच में कुछ इस तरह से कि हर तरफ सितारे झिलमिलाने लगे, देर कर दी दिल उनकी और सभी के दिल झूमने लगे, और सबके मन जैसे कि खिलखिलाने लगे, आदरणीय श्रीमती सिद्धि जी।
ओम शांति। आध्यात्मिक नारी, सशक्त नारी, आध्यात्मिक नारी, संपन्न नारी, आध्यात्मिक नारी, सशक्त नारी, इसी संपन्नता, सशक्तता और सार्थकता से, इसी स्पिरिट से आप सभी को, आए हुए सारे मेहमानों को, मंचासीन सारे जो दिव्य आत्माएं हैं, शिव शक्तियां हैं, उन सभी को मेरा हार्दिक नमन और अभिनंदन। जो ये प्यारा सा ओकेजन है, जो कॉन्फ्रेंस कम मेडिटेशन रिट्रीट ऑन द टॉपिक विमेन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट है, और जिसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपने आप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है, जिसके लिए मैं मानती हूँ कि हम सब अगर मिलकर यहाँ पर चर्चा करते हैं, और सारे जो राजयोगिनी दीदी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो स्पीकर्स आए हैं, या फिर जो गेस्ट आने वाले हैं, कल से, आज से इसका आगाज हो चुका है और जो शुरुआत हो रही है, मैं मानती हूं कि यहां पर जो हम डिस्कशन करेंगे, जो भी हम बातचीत करेंगे, जो भी हम सीखेंगे, जो भी हम मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लेकर जाएंगे, वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। और ना कि सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी फैमिली के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम वो कहते हैं जैसे वुमेन, इफ यू एडुकेट अ मैन यू जस्ट एडुकेट अ मैन, एंड इफ यू एडुकेट वन वुमेन इन अ फैमिली देन यू आर एडुकेटिंग द होल फैमिली। तो वुमेन दे आर कंसिडर्ड एज मैसेंजर्स ऑफ दिस सोसाइटी। तो वुमेन का रोल, उनकी सिग्निफिकेंस, ये हमें सबको पता है। और बीइंग अ फीमेल हम सब ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वुमेन दे आर द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर द हाफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो कंसिडरिंग दिस ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड कि हम पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है एक हेल्दी, क्लीन और एक हैप्पी सोसाइटी बनाने में। और साथ ही हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, खुद के एनलाइटनमेंट के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी का एनलाइटनमेंट करने के लिए हमारा रोल कितना इम्पॉर्टेंट है, ये हमें ये समझ तो है, लेकिन इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज में आकर हम वापस रिचार्ज हो जाते हैं। सो ये रिचार्ज मैकेनिज्म, ये रिवाइव मैकेनिज्म जो ब्रह्म कुमारी के प्लेटफॉर्म में आकर होता है, वो मैं मानती हूं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम यहां पर आमंत्रित हैं एज गेस्ट, एज ऑडियंस, एज फैमिली मेंबर्स आई वुड रादर से, कि हम पे ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम इसका हिस्सा बन पाए हैं। और हम आगे जाकर शायद ऐसा ही कुछ यहां से जो मैसेज लेके जाएंगे वो हम आगे आगे प्रोपगेट करेंगे, रेडिएट करेंगे और आगे इस ज्योति को और फैलाएंगे, ऐसा मैं मानती हूं। मेरा इंट्रोडक्शन दीदी ने दिया, मैं फिर भी थोड़ा ब्रीफली देना चाहूंगी। यहां पर मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूं, आई एम अ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट, अ गोल्ड मेडलिस्ट, ऑल्सो गेस्ट फैकल्टी फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स। मेरे प्रोफेशन में और मेरी लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न तब आया जब मुझे राजस्थान रिप्रेजेंट करने का मौका मिला एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, एंड देन आई वॉन मिसेज इंडिया इंटरनेशनल, मिसेज गैलेक्सी, क्वीन इंडिया एंड मेनी अदर टाइटल्स। क्योंकि मेरी रुचि हमेशा से समाज सेवा में थी और बीइंग इनटू मेडिकल प्रोफेशन, मुझे ग्लैमर वर्ल्ड से ज्यादा रुचि सोशल फिलैंथ्रोपी फील्ड में थी। तो मैंने उसी फील्ड को, उसी प्रोफेशन को अपना पैशन बनाया और एज अ रिजल्ट आई वॉज ऑनर्ड टू वर्क एज नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, नेशनल हेल्थ एजुकेशन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडो नेपाल ग्रीन मिशन बाय यूनाइटेड नेशंस एंड श्री कल्पतरु संस्थान, एंड मेनी मोर एम्बेसडर्स फॉर मेनी नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। करेंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रमोशन काउंसिल के लिए जो काम करती है, उस काउंसिल की सेंट्रल लेवल पे एज डायरेक्टर अपॉइंट हुई हूं। तो मैं इस तरह से अपनी क्राउन विनिंग जो विक्ट्री है उसको यूटिलाइज कर रही हूं। ये सब मैं यहां पर इसके लिए बता रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इतना जो बिजी हेक्टिक शेड्यूल होता है उसमें जब हम स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व कर देते हैं या फिर स्पिरिचुअल विजडम जब हमें धीरे धीरे मिलने लगती है तो हमारे अंदर एक बहुत कामनेस, स्टिलनेस और एक इस तरह की अवेकनिंग होती है। जैसे कि हमारे मुझसे पहले जो भी सीनियर स्पीकर्स हैं उन्होंने भी कहा कि इट अवेकन्स द थर्ड आई ऑफ विजडम। सो इस तरह की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ हमें स्पिरिचुअलिटी से मिलती है। तो मुझे भी जब भी ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है या फिर बहुत कुछ ऐसा मोनोटोनस हो रहा है या वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है या फिर टाइम मैनेजमेंट के कारण बहुत कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ फीमेल एंड आई रन अ फैमिली, आई एम मैरिड सो आई हैव अ डॉटर ऑल्सो, आई प्ले मल्टी डायमेंशनल रोल्स, तो स्वाभाविक है कि हमारी रूटीन लाइफ में हम थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं या फिर टाइम मैनेजमेंट को लेकर हम कई बार थोड़ा सा बैफल्ड फील करते हैं या फिर परप्लेक्स फील करते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में मुझे जो इस तरह के ब्रेक मिलते हैं, चाहे ये ब्रह्म कुमारी की कॉन्फ्रेंसेज हो, मेडिटेशन रिट्रीट हो, तो यहां पर हम कंप्लीटली रिचार्ज हो जाते हैं। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब भी, चाहे प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म से हो, कोई भी फील्ड से हो, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का ऐसा एक हिस्सा बनाएं कि वो आपको एक स्ट्रेंथ दे, इनर स्ट्रेंथ दे, इनर विजडम दे, इनर स्टिलनेस दे, इनर कामनेस दे और आपको एक अलग ही शाइन दे लाइफ में। बिकॉज व्हेन स्पिरिचुअलिटी इज अडॉप्टेड इन लाइफ, we shine very differently. And trust me here, you can consider me a live example of this. Empowerment ki jab baat aati hai, women empowerment ki, main khud national brand ambassador hoon, to women empowerment sirf physical empowerment hona ya fir mental health empowerment hona ya fir financially unhe empowered karna nahi hai, balki saath hi saath unhe spiritually empowered karna bhi hai. To isi spirit ke saath mein aap sabhi ko is conference ka aaj jo first day hai, inaugural ceremony hai, usme aap sabhi ka swagat karti hoon. Hum sab ne abhi bahut sare examples sune, जो भी आजकल की सोसाइटी में हो रहा है, जो भी आजकल हम सुन रहे हैं न्यूज में, बहुत नेगेटिव न्यूज भी आती है, बहुत सारे अलग अलग हम पॉजिटिव अचीवमेंट्स भी देखते हैं जो वुमेन कर रही हैं, हर एक क्षेत्र में कर रही हैं, वो मुझे यहाँ पर गिनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो वट नॉट द वुमेन आर डूइंग इन वेरियस डिफरेंट फील्ड्स. कंसिडरिंग दिस, आई वुड से कि हमें पॉजिटिव एग्जाम्पल्स लेने हैं, हमें अच्छे एग्जाम्पल्स लेने हैं. हम हमारी प्राचीन काल से भी अगर देखें तो हमेशा नारी को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उनकी जो सुपीरियरिटी है वो इस तरह से प्लेस की जाती है कि वी ऑलवेज हैव हर्ड राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीताराम. तो हमेशा पहले क्या आता है? फेमिनिन. तो हमें वो एग्जाम्पल्स देखने हैं और मैं चाहूंगी कि हम भी वही एग्जाम्पल्स बने, हम उस तरह की फीमेल्स बने और उस तरह की वुमेनहुड को चेरिश करें कि वी नॉट ओनली जस्ट एम्पावर आवर सेल्व्स बट ऑल्सो एम्पावर द सराउंडिंग वुमेन, जो कि शायद इतनी प्रिविलेज नहीं है, जो कि शायद इतनी ब्लेस्ड नहीं है रिसोर्सेज के मामले में. तो वी शुड बी एन आइकनिक एग्जाम्पल्स फॉर दोज अंडर प्रिविलेज वुमेन. हमें जीतना नहीं है, हमें सबको मिलकर जिताना है, ये हमारा एक स्पिरिट होना चाहिए. हमें खुद भी जगना है और औरों को भी जगाना है, ये हमारा एक अंदर का मोटिवेशनल स्पिरिट होना चाहिए. इसी मैसेज के साथ में आप सभी को मेरा हार्दिक नमन और अभिनंदन. मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए डॉक्टर सविता दीदी, मीनू दीदी फ्रॉम जोधपुर एंड शील दीदी फ्रॉम जोधपुर, उनको तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वार्म इन्विटेशन. आई वुड टेक अ लीव नाउ. थैंक यू वेरी मच.
धन्यवाद बहन जी का. अब हम सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. तो हमारे सामने अभी हमारी राजयोगी ममता मई माँ, आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, चेयरपर्सन ह्यूमन विंग के आप हैं. आपका शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगी. आदरणीय बीके चक्रधारी दीदी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के महिला प्रभाग की मुख्य अध्यक्षा हैं. आपने इतिहास और राजनीति विज्ञान में पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की है. आपकी आध्यात्मिक ज्ञान व नैतिक मूल्यों में रुचि ही आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में लाई है. वर्ष 1962 से आप समर्पित रूप से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों पर आसीन रह चुकी हैं. आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका व शक्ति नगर संबंधित सेवा केंद्रों दिल्ली की मुख्य संचालिका, आपने कई देशों जैसे यूके, यूएसए आदि आदि के कई अन्य देशों की यात्रा की है और विश्व में फैले ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय ज्ञान के अनुभवों को सबके साथ अपने अनुभवों को साझा करके सबका मार्गदर्शन कर जीवन जीने की कला को सिखा रही है. आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ज्ञान अमृत में लेखों और लघु कथाओं द्वारा भी अपना योगदान दिया. आप दिल्ली जोन की इंचार्ज हैं. आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के महिला विंग के चेयरपर्सन हैं. आप ब्रह्मा कुमारीज की रूस अन्य
अन्य गण राज्यों की यूएसएसआर के हिस्सों में महाप्रबंधक हैं। आप राज्योग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन संचालक मंडल की सदस्य हैं। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, शिव की साक्षात गंगा हैं आप, शिव की साक्षात गंगा हैं आप, ब्रह्मा की संजीव लेखनी हैं आप, पवित्रता की जीवनी हैं आप, पवित्रता की जीवनी हैं आप, नारी सशक्तिकरण की तेजों में प्रतिमूर्ति हैं आप, प्रतिमूर्ति हैं आप, अनेक चक्रों से छुड़ाने वाली, अनेक चक्रों से छुड़ाने वाली, देश विदेश की बेहद सेवाओं के चक्र लगाने वाली आदरणीय वरिष्ठ राजयोगिना राजयोगी चक्रधारी दीदी जी।
ओम शांति। आज तो आप सबका स्वागत सत्र है, जिसमें स्वागत के ही चंद शब्द सभी को बोलने के लिए कहा गया। सर्वप्रथम मैं भी स्वागत की इस कड़ी में यही कहूंगी, मंचासीन मेरी राजयोगिनी बहने तथा मेरे अतिथिगण और मेरे सन्मुख उपस्थित आप इस दिव्य कार्यक्रम के आकर्षण में आकर्षित होकर इस स्थल पर पहुंचे। आप सबका अपने ही घर में अपनों के द्वारा बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बात चल रही है महिला सशक्तिकरण की, और हम देखते हैं कि आज महिलाएं हर वर्ग में बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है और बहुत सुंदर रोल अदा कर रही, परंतु आध्यात्मिक सशक्तिकरण से हमारा तात्पर्य क्या है? उनके जीवन में शांति हो, सुख हो, प्रेम हो, आनंद हो, ताकि घर को घर बनाकर एक सुंदर गृहिणी का रोल अदा कर सके। जिस घर में बच्चे, पति अथवा घर के बड़े बुजुर्ग सभी खुशहाली का जीवन जी सके, जो किसी के संस्कारों से प्रभावित होकर अपने श्रेष्ठ संस्कारों को तिलांजलि न दे दे, ऐसी सशक्त महिला आज के समय में होनी बहुत आवश्यक। मुझे याद आता है एक बार किसी एक महिला ने कहा इस विद्यालय के प्रमुख पिताश्री से कि बाबा, बच्चे आजकल बहुत तंग करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, उदंड होते चले जा रहे हैं। तो पिताश्री ने इतना ही कहा, बच्चे बिच्छू टिंडन की तरह हो गए हैं, कोई बात नहीं, संभालने हैं। तो उसने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं, बाबा ने तो और ही कहा बच्चे ऐसे हो गए हैं, लेकिन वास्तव में ये उन्होंने उत्तर दिया था। क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों को संवारा जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसको समाया जा सकता है और सहन करके आगे बढ़ा जा सकता है। अब मान लीजिए बच्चे उदंड हो रहे हैं या शैतान हो रहे हैं, तो उन्हें त्याग तो नहीं सकते, छोड़ तो नहीं सकते, कहीं फेंक तो नहीं सकते, लेकिन वर्णन करने से वो दुख आपका बढ़ता चला जाएगा। और उनकी कमजोरी या कमी का वर्णन करने से उन बच्चों को आप कमियों और कमजोरियों से मुक्त नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी जगह पर कोई ऐसा गांव है जहां चीनी बनती है, बहुत गन्ना आता है, मक्खियों की भरमार है, चारों तरफ मक्खियां बिन बिन आती हैं, लेकिन वहां के रहवासी अपना गांव छोड़ के कहीं चले नहीं जाते, उसी गांव में रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, अगर खाते समय मक्खी आ जाए ऐसे करके गिट्टी मुख में डालते हैं, ऐसे करते चले जाते हैं, खाना खा लेते हैं, मक्खी आ रही है, सो रहे हैं, बीच में पंखा है, गर्मी का मौसम है, ऐसे किया तो लिया। अब वो वर्णन नहीं करेंगे सभी से, मक्खियां बहुत हैं, मक्खियां बहुत हैं, बहुत हैं, तो उस बहुत के मध्य अगर आपको रहना ही है तो अपना कुछ सलूशन ढूंढ करके, समा करके, सहन करके आपको रहना होगा। आप किसी जगह पर कहते एक शहर है, सुना तो है राजस्थान के साइड में है, जहां बहुत चूहे हैं और हर चूहा लगभग आरे की एड़ी कुतर जाता है। कोई वर्णन नहीं करता, अरे मेरी एड़ी कुतर ली, अरे मेरी भी तो कुतरी हुई है, तेरी कुतर ली तो मेरी कुतर ली, कौन सी बड़ी बात, सबकी कुतरी हुई है। अपनी एड़ी को कुछ ख्याल कर लीजिए, उसको बचाना कैसे है या संभाल के अब चलना कैसे है, वर्णन करने से कुछ नहीं होगा। कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिसका हम वर्णन बहुत करते हैं लेकिन उसका सलूशन नहीं ढूंढते, जिससे हम बोझिल हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। हमको ईश्वर बताते हैं, ब्रह्मरी को आपने देखा होगा, तितैये जैसी, छोटे ततैये जैसी होती है लेकिन काले रंग की होती है, कैसी वो दीवार में गोल गोल मिट्टी का घर बना लेती है और कीड़ों को ला करके उस घर में डाल देती है और बाहर बैठ करके वो भू भू करती रहती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो कीड़े तितैया का उसका रूप ले लेते, उस भंवरी जैसे वो बन जाते हैं। जब वो भ्रमरी जैसा बन जाता है तो धीरे धीरे अपने घर से उड़ जाता है। एक भ्रमरी भी एक कीड़े को भ्रमरी बना देती है। ईश्वर कहता है क्या तुम उससे भी गए गुजरे? अगर आपका कोई बच्चा लायक नहीं है, पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ता है, आप हर प्रयत्न करते हो, हर प्रकार की ट्यूशन का प्रबंध करते हो, हर रूप से उसे पढ़ाने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी जब वो सो जाए तो थोड़ी देर रात को पास बैठ करके अपने मन से उसको इस प्रकार की शुभ वाइब्रेशन दीजिए, मेरा बेटा बहुत लायक है, मेरा बेटा बहुत अच्छे नंबर लेगा, मेरा बेटा आगे बढ़ के मुझे दिखाएगा, मेरा बेटा कल कुल की दीपक है, मेरे घर की शान है। अरे कुछ समय तो मन से उसे श्रेष्ठ भावनाएं देकर अगर एक भ्रमरी कीड़े को भ्रमरी बना सकती है, क्या माँ अपने बच्चे को एक ऐसा योग्य नहीं बना सकती? लेकिन हम सदा ये कहें ये पढ़ता नहीं, ये लायक नहीं, नंबर अच्छे नहीं लेता है, ये नालायक बहुत है, ये कहाँ जाएगा, क्या नौकरी करेगा, क्या धंधा। हर समय आप अगर ऐसा ही बोलेंगे तो आप अपने बच्चों को सुयोग्य कैसे बनाएंगे? आप उनको समझदार कैसा बना पाएंगे? आप उनके लिए देखते ही कहिए मेरा लाल तो अपने कुल का दीपक है, ये तो अपने कुल को रोशन करेगा। जो पुरुषार्थ करना है वो पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन मन की शुभ भावनाएं कभी बंद न कर दीजिए। ये हमने कहां से सीखा? ये आध्यात्मिकता से सीखा। जब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में जब रोज हम ज्ञान सुनते हैं और ज्ञान का प्रथम ईश्वर का महावाक्य है मेरे मीठे बच्चे, हम कभी देखते हैं हमें तो कभी कड़वाहट भी आ जाती है, मिठास तो ऐसी नहीं है, लेकिन हमेशा पिताजी उस परम पिता परमात्मा के मुख से हमारे लिए यही निकलता है, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। और मैं देखती हूँ सचमुच उनका मीठा कह कह कर, जैसे एक वो होता है जिसके ऊपर से घिसा करके और हम उसको झाग निकाल के कड़वाट निकालते हैं उस खीरे की, रियली कह कह करके परमात्मा हमारी कड़वाहट को निकाल के हमको मीठा बना देते हैं। तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण का मतलब क्या है? आत्मा के अंदर इतनी शक्तियां हैं, आत्मा का निज स्वरूप बहुत पवित्र है, बहुत दिव्य है, महान है, आनंद का स्वरूप है, ज्ञानिष्ठ है। अपने उन छिपी हुई सुषुप्त शक्तियों को सुषुप्त ना रखिए, जगाइए उनको। किसी बिगड़े हुए को सुधारने के लिए केवल शब्दों का आधार नहीं, साधनों का आधार नहीं, अपनी साधना का आधार लेकर के उनको श्रेष्ठ मनोभावना देकर के आप किसी को क्या से क्या बना सकते हैं, ये ईश्वरी ज्ञान हमें सिखाता है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण का मतलब ही है अपने घर को घर नहीं बनाओ, घर को रहने योग्य सुंदर आश्रम बनाओ। किसी आश्रम में आपस में कलह क्लेश हो, खान पान की अशुद्धि हो, आपस का प्यार और प्रेम ना हो, कौन कहेगा ये आश्रम है? लेकिन घर की नारी घर ही नहीं बनाती, लेकिन घर की नारी घर को आश्रम बनाए। आश्रम का मतलब अपने घर को छोड़ करके, बच्चों को त्याग करके, कोई भगवा पहन के या दूसरे कपड़े पहन करके किसी अलग स्थान पर बैठ जाना नहीं है। अगर आपने घर रचा है तो घर की पालना करके घर को एक श्रेष्ठ आश्रम न्याय बनाना, ये महिलाओं की ड्यूटी है। ये वास्तव में सशक्तिकरण, इसे आध्यात्मिक सशक्तिकरण कहते हैं। तो आज भाषण का दिन नहीं है, लेकिन मैं आपको, मुझे कहा गया आशीर्वचन दीजिए, तो मेरे हृदय से आशीर्वचन यही है कि आप सब जो यहाँ आए हैं सचमुच जब यहाँ से लौट के जाएं, तो जैसे एक मैसेंजर अनेकों को मैसेज देकर उस मैसेज के आधार से उनके जीवन का परिवर्तन करके उस धर्म को वो मानने वाले धर्मावलंबी बन जाते हैं, आप भी ऐसी महान विभूतियां यहां से जब जाओ तो आपका जीवन इतना परिवर्तित हो कि अगर कोई ठीक ना बोले तो यही समझना ये मधुर वचन का धनी नहीं है, निर्धन है। अगर निर्धन से मैं झोली पसार कर कहूं कि मेरी झोली भर दे, वो स्वयं ही निर्धन है, वो मेरी झोली कैसे भरेगा? वो ये चाहेगा कुछ तेरे पास है तो मुझे दे दे। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को कहते हैं सशक्त बनने का मतलब किसी से चाहो नहीं, जो कुछ तेरे पास है अच्छे से अच्छा तो देता चल, तेरे देने से तो दाता का बच्चा दाता कहलाएगा और देवताओं को देने वाला दाता होने के कारण उन्हें देवता कह के पुकारा है। तो इंसान आए हैं यहाँ देवता बनकर जाना, ऐसा ही मेरा हृदय से आप सबके लिए ब्लेसिंग्स है। बाकी मुझे पता चला है कि आज हमारी सभा में, हमारे माउंट आबू में रहने वाली बहुत सी बहनें इस सभा में विराजमान हैं, क्योंकि अधिकतर बाहर से सब महिलाएं आती हैं लेकिन अपने घर के घर में ही रह जाते हैं, वो नहीं आते। आज आए हैं, जरा खड़े हो जाएं, सभी भी तालियां बजाना, इनके दर्शन करना। ये वो महान विभूतियां जो गंगा के तट पर रहती हैं और गंगा के तट से गंगा का जल पी करके अपने जीवन को निर्मल करने का संकल्प करके यहाँ आई हैं। हृदय से मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, दाता आपको सद्बुद्धि दे और सदा सुखी रहो और आपका परिवार सुख में बन जाए। ओम शांति, ओम शांति।
धन्यवाद दीदी जी का, आपने हम सभी को प्रेरित किया कैसे पॉजिटिव रह करके अपने बच्चों को और अपने परिवार के सदस्यों को पॉजिटिव बनाना, हर एक की विशेषताएं देखना, ये सच है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सभी आत्माएं पतिताई, हमारे अंदर बहुत सी कमियां कमजोरियां रही, पर शिव बाबा ने और पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने जो दीदी जी ने कहा, हमारी विशेषताएं देख करके, हमारे गुण देख करके, ना केवल मीठे मीठे बच्चे कहा, लेकिन आपने सभी को मीठे मीठे बना दिया। और आपने देखा अपनी आदरणीय दीदी जी को कितनी मीठी हैं, कितनी प्यारी हैं, सर्व की प्रिय हैं, तो ये बनाने वाला कौन? शिव परमात्मा। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। धन्यवाद दीदी जी का। अब मैं माइक डॉक्टर सविता बहन जी को दूंगी। हाँ, इसके बीच में हमारे मेहमान का आप सम्मान करेंगे। बहनों को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप सौगात लेकर के आए, चक्करधारी दीदी जी और सविता बहन आपका सम्मान करेंगे। आप तालियों द्वारा सम्मान करते रहें। बजाते रहिए आप तालियां, लास्टी तो है, फिर तो कल बजानी है, अभी तो नहीं बजानी। धन्यवाद। ओम शांति। अंत में शिव बाबा की याद का एक गीत बजेगा और हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होगा। लेकिन अभी आपको गॉडली गिफ्ट भी मिलेगी और कुछ डायरेक्शंस भी अपनी सविता बहन जी आपको सुनाएंगे।